शून्यवादी पश्चात देश तारिणे गुरवे गौरचंद्राय राधिका तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यम् नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। श्री राधा गोविंद देव मंदिर इस्कान झांसी में प्रातः श्रीमद् भागवत के सत्संग में आप सब श्रद्धालुओं का स्वागत है। भाग्यशाली है कि कली काल में भगवान श्री कृष्ण के इस अद्भुत वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत के श्रवण में आपको रुचि है और आप पधारते हैं भागवत के श्रवण के लिए। आपका हृदय से स्वागत करते हैं और धन्यवाद भी करते हैं। और सौभाग्य से भागवत के दसम स्कंद जो भगवान का मुस्कुराता हुआ मुख मंडल है और भागवत का जो मुख्य एक विषय आश्रय जिसके ऊपर और नौ विषय आधारित हैं आश्रय विषय ये दसम स्कंद भगवान की मधुरमयी लीलाएं हैं। और दसम स्कंद के दो विभाग हैं पूर्व अर्ध और उत्तर अर्ध। पूर्व अर्ध में वृंदावन में गोकुल में वृंदावन में नंदगांव में तीन स्थानों पे पहले भगवान की कुमार अवस्था की बाल लीलाएं जो अभी हम श्रवण कर रहे हैं जो 5 साल की आयु तक होते हैं और पौंगल अवस्था 5 से 10 साल तक वो सखाओं के संग लीलाएं हैं। पहले 5 साल वात्सल्य प्रेम वाले बड़े गोप गोपियों को आनंद देने के लिए लीलाएं हैं और 5 साल से 10 साल तक पौंगल अवस्था की लीलाएं सखाओं को रस आस्वादन करा के सखा रस के पोषण की लीलाएं हैं। और किशोर अवस्था 10 साल के बाद की, उसमें भगवान की माधुर्य गोपियों के संग लीलाएं हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ब्रज में रहे ही 10 साल और 5-6 महीने, तो फिर ये तीन अवस्थाएं कैसे होंगी? तो हमारे आचार्यों ने लिखा है, जब सामान्य बाल 3 वर्ष का होता है बालक, तो भगवान 5 वर्ष के होते हैं। तो इसका मतलब 6 वर्ष के 10 वर्ष के हो गए और 9 वर्ष के 15 वर्ष के हो गए, तो किशोर 15 वर्ष में आ गया। तो ऐसे भगवान का जो वय है उसमें किशोर वय सबसे ज्यादा प्रिय है। तो ये लीलाएं भगवान करते हैं और फिर मथुरा में 16-17 साल तक लीला जो होती है, 18 तक कहते हैं, तो ये पूर्व अर्ध में आती है। और जरासंध और काल यवन के बाद भगवान जब रणछोड़ बन के जाते हैं, वो फिर उत्तर अर्ध में आती है, वहां से फिर द्वारका लीलाओं का वर्णन है। तो ये पहले 49 अध्याय तक तो ऐसे ही है, फिर 50वें अध्याय के बाद 40 अध्यायों में द्वारका लीला है। ये सबसे बड़ा स्कंद है भगवान का, और आश्चर्य का स्कंद इसको कहते हैं। तो इसमें हम 12वें अध्याय में भगवान की अभी कुमार अवस्था की बाल लीलाओं का वर्णन है। 4 वर्ष के भगवान ने ये लीला की, और 1 वर्ष तक तो ब्रह्मा जी ग्वाल बाल और बछड़े चुरा के ले गए। तो इस लीला की कथा 5 वर्ष के बाद शुरू हुई, तो 1 साल बीच में बीत गया। तो अब भगवान की, ब्रह्मा जी जब प्रार्थना करने आते हैं तो भगवान बाल अवस्था पूरी करके पोंगल अवस्था में प्रवेश कर जाते हैं। तो आज का श्लोक, कल हमने श्लोक कौन सा पढ़ा था? कल हमने श्लोक पढ़ा था कि भगवान, कल हमने श्लोक जो पढ़ा था, इस तरफ वाला नहीं काम कर, हरे कृष्णा, ये चल रहा है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। तो कल हमने ये श्रवण किया था कि जब अघासुर का भगवान ने उद्धार किया, तो भगवान तो अभी अघासुर के मुख में ही थे, गले तक थे, लेकिन अघासुर का आत्मा शरीर से निकल के बाहर प्रतीक्षा कर रहा था। जब भगवान ग्वाल बालों को पुनः, जब ग्वाल बालों को भगवान पुनः अमृतमय दृष्टि से, नींद से जैसे जगाया जाता है, ऐसे जगा के बाहर आए, तो अघासुर की आत्मा भगवान के शरीर में प्रवेश किया। ये देखकर सारे देवता, विद्याधर, अप्सराएं और ऊपर के लोकों में, और विप्र ब्राह्मण इस धरती के ऊपर बड़े आनंदित हुए, और हरेक ने अपने जो उसके पास योग्यता थी, जो उसके पास कला थी, जो उसके पास प्रतिभा थी, जो उसके अंदर टैलेंट था, वो भगवान के गुणगान करने में लगाया। देवताओं ने नंदन कानन के पुष्पों की वृष्टि की, अप्सराओं ने नृत्य किया, विद्याधरों ने और गंधर्वों ने गाया, नृत्य किया, वाद्य बजाए, और विप्रों ने वेद की स्तुतियां की। तो इसका प्रभाव कहां पड़ा? ब्रह्मा जी अपने लोक में बैठे हुए ये सब सुन रहे हैं, ये आज का श्लोक है। तो आइए श्लोक का पाठ करते हैं, 35वां श्लोक, 10वां स्कंद, 12वां अध्याय, 35वां श्लोक।
तदद्भूतस्तोत्र स्वाद्य गीतिका जयादि नैकोत्सव मंगल स्वानन श्रोत्वा स्वधामो अन्त्य अज आगतो चिरा दृष्ट्वा महिषस्य जगाम विस्मयम्। तदद्भूत श्रोत स्वाद्य गीतिका जयादिनैकोत्स्व मंगलस्वाना। श्रुत्वा स्वधामनो अन्त्यजो आगतो चिरा दृष्ट्वा महिषस्य जगाम विस्मयम्। पाठ कीजिए। श्रुत्वा स्वधाम्नो अन्त्य जागतो चिरात् दृष्ट्वा महिषस्य जगाम विस्मयम्। तदद्भुत स्तोत्र स्ववाद्य गीतिका यादिनैकोत्सव मंगल स्वत्ना श्रुत्वा स्वधामनो अन्त्य अजागतो चिरा दृष्ट्वा महिषस्य जगाम विस्मयम्। तदद्भूत स्तोत्र स्ववाद्य गीतिका जयादिनैकोत्स्व मंगल स्वना श्रुत्वा स्वधामनो अन्त्यजोगातो चिरा दृष्ट्वा महिषस्य जगाम विस्मयम्। तदद्भुत श्रोत सुवाद्य गीतिका जयादिनैकोत्स्व मंगल स्वनान श्रुत्वा स्वधामनो अन्त्य जगतो अचिराद् दृष्ट्वा महिषस्य जगाम विस्मयम्। कोई माँ जयादिनैकोत्स्व मंगल स्वनान श्रुत्वा स्वधाम्नो अन्त्य अजागतो चिराद् दृष्ट्वा महिषस्य जगाम विस्मयम्। और कोई बोलना चाहे तो बोले। तदद्भुत श्रोत श्रोत्रादि गीतिका जयादिनयोत्स्व मंगल स्नान श्रुत्वा स्वधाम्नो अन्त्य जागतो चिराद् दृष्ट्वा महिषस्य जगाम विस्मयम्। तो तद माताजी पढ़े यहाँ पढ़िए माताजी। कदाद्भुत श्रोत सुवाद्य गीतिका जयादि नायकोत्सव मंगल सना दृष्ट्वा सुधामनो अन्त्य अजागतो चिराद दृष्ट्वा महिषस्य जगाम विस्मयम्। तो अब शब्दों का ध्यान दीजिए। तद तद का मतलब है जो देवताओं की पुष्प वृष्टि और वाद्य बज रहे थे, नृत्य हो रहा था और उत्सव का जो शब्द ध्वनि हो रही थी उसको, तद का मतलब उसको, उत्सव को, देवताओं के विद्याधर अप्सराओं और विप्रों के उत्सव को। कैसा उत्सव था? अद्भुत। अद्भुत उसको कहते हैं जो ऐसे अचानक हो जाए। एक तो रोज होता है, जैसे रोज आरती होती है, लेकिन कभी कभी बहुत बड़ा उत्सव कोई हो जाता है, तो वो सामान्य नहीं था, ऐसे रोज नहीं होता था। अचानक भी देवताओं ने एकदम जो है वो दुमदुमियां बजाई, मृदंग ढोल ये बजने लगे, तो ये अद्भुत का मतलब है आश्चर्य में डालने वाला। एक सामान्य होता है, एक आश्चर्यजनक चीज होती है। आश्चर्यजनक हुआ, क्या सुनने में आया? स्तोत्र। स्तोत्र का मतलब है कोई भगवान की महिमा का श्लोक गाए जाए। बहुत सारे स्तोत्र हैं वेदों में, तो स्तोत्र स्ववाद्य ऐसे सिर्फ गाए नहीं जा रहे थे, सुंदर बाजे भी बज रहे थे, स्ववाद्य अच्छे मधुर स्वर में बजने वाले बाजों के साथ स्तोत्र गाए जा रहे थे। और क्या गाया जा रहा था? गीतिका, बड़े भगवान की महिमा के गुणगान के गीत गाए जा रहे थे। तो इनको और क्या सुन, और क्या हो रहा था? जय आदि, और जय हो ऐसी ध्वनि हो रही थी। जिनको गाना आ रहा था वो गा रहे थे, जिनको बजाना आ रहा है वो बजा रहे थे, और जिसको कुछ नहीं आ रहा था वो जय हो कर रहे थे। तो प्रायः जय हो वाले ज्यादा होते हैं, और कुछ नहीं है तो जय हो तो कह सकते हैं ना। तो जय की ध्वनि जरा जोर से हो रही थी, क्योंकि बहुत सारे लोग जय हो ऐसे कह रहे थे। वो किसके लिए कह रहे थे? बोला नायक उत्सव मंगल स्वनान। ये नायक उत्सव का मतलब भगवान, श्रील प्रभुपाद ने नायक उत्सव के लिए लिखा है नायक उत्सव। ये उत्सव केवल परंपरा पुरुष भगवान की गाथा गाते हुए मैं अकेला जाता, ये तो बहुत सारे बेचारे वृद्धों को ऊपर आने का कष्ट हो रहा है, अरे कृष्णा अरे ये तो यह तो अन्याय है। एक दफा मेरे माता जी भी आई परेशानी से, तो अच्छा है हमको, लेकिन धूप का, वैसे आप एक घंटा धूप में नहीं बैठेंगे, तो ये आपका ये धूप का जो स्नान है, सूर्य है, सूर्य स्नान, ये सब और यहाँ तुलसी महारानी और सूर्य भगवान कोई सुनेंगे कथा को, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। अब जय आदि नायक उत्सव, न एक उत्सव, ये उत्सव एक भगवान की, जो जो भी गाया जा रहा था वो एक भगवान के लिए गाया जा रहा था। वो भगवान कैसे हैं? बोला 4 साल के छोटे बालक। आयु कितनी है भक्त? 4 साल के छोटे बालक है, ग्वाल वेश में है, और उसका ये सब लोग महिमा गा रहे हैं। अद्भुत इसलिए है भाई, चतुर्भुज भगवान हो तो उसकी महिमा गाए है तो पहले सुनने में आती है। ये तो ठुमक ठुमक चलने वाले बाल की महिमा गाई जा रही है, हाथ में लकुटी है
काथे पे कंधे पे कंबलिया है, कंबल है, और गैया चरा रहा है, सिंह है, खोसा हुआ बांसुरी है, और फूलों की माला है, और श्रृंगार भी ये तो बन के फूलों का है, इसकी महिमा गाई जा रही है। ये तो आश्चर्य है ना, ये तो आश्चर्य है ना, मंदिर है ऐसे ही है, किस बात की महिमा गा रहे, क्या हो गया अचानक। तो और जो गाया जा रहा था उसका प्रभाव कैसे पड़ रहा था, मंगल स्नान वो सबके लिए कल्याणकारी था। ऐसे जब यहां डीजे वीजे होता है तो हाय घोड़ा इतनी होती है कि लोग सो नहीं सकते हैं, दिल की जो दिल का जिनको रोग होता है बेचारों की अस्पताल में ले जाया जाता है, तो वो मंगल वाला नहीं होता है, वो अमंगल कार्य होता है। तो ये जो भगवान की महिमा गाई रही थी, मधुर सुर मधुर बाजे जो बज रहे थे, ये मंगलकारी था। मंगल स्वनान का अर्थ लिखा है श्रील प्रभुपाद जी ने, मंगल स्वनान दिव्य ध्वनि मंगलकारी सबके लिए थी। ये ध्वनि, ये जो दिव्य ध्वनि थी जो गीत की स्तोत्र की, वो सबके लिए मंगलकारी थी। और इस मंगलकारी ध्वनि को श्रुत्वा सुना, किसने सुना और कहां सुना, बोला सुना अज ने। अज कौन है, बोला अजय ब्रह्मा, अजन्मा है, किसी मां से जन्म नहीं हुआ है उसकी, ब्रह्मा जी जो है वो निःशुल्क का है, वो किसी मां के गर्भ से नहीं हुआ है, पिता के वीर्य से नहीं हुआ है, अयोनिज है। तो ब्रह्मा जी का कहते अज, अजन्मा। तो उनका कैसे जन्म हुआ है सब जानते हैं कि भगवान गर्भोदक्षाई विष्णु की नाभि से निकलने वाले कमल के डंडे के ऊपर, बड़े महान कमल पुष्प के ऊपर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। तो ब्रह्मा जी का जन्म भगवान के अंग से हुआ है, तो इसलिए उसको अजन्मा कहते हैं। भगवान को भी अज कहते हैं, भगवान अजन्मा है, और ये भगवान से जन्म लिए हुए ब्रह्मा को भी अज कहते हैं। तो अज ने सुना कहां से, ब्रह्मा जी ने कहां से सुना, स्वधाम, अपने धाम में थे, ब्रह्मा जी के धाम को कहते हैं सत्यलोक। सात ऊपर के लोकों में सबसे ऊपर का लोक ब्रह्मा जी का है सत्यलोक। हम रहते हैं ये बीच का सातवां लोक है भूलोक, इससे नीचे सात लोक है जिसमें सबसे नीचे है पाताल, सुतल तला तला अतल वितल, ये सब नीचे लोक हैं। तो सबसे नीचे पाताल और सबसे ऊपर सत्यलोक, और बीच में हम रह रहे हैं ये है भूलोक, जिसमें धरती के ऊपर हम रहे हैं ये भूलोक है। तो ये मान लो 14 मंजिल की बिल्डिंग है भगवान ने बनाई, ये 14 मंजिल का पूरा भूमंडल है। इस 14 मंडल के भूमंडल को कभी कभी ऊपर मध्य और नीचे तीन लोक कहते हैं, ऊपर मध्य और नीचे के लोक। तो उसमें भी ऊपर के लोग, एक दृष्टि से ऊपर के लोग उनको कहते हैं जो ब्रह्मा जी की रात के समय प्रलय जिनमें न हो, वो स्वर्ग के ऊपर के लोक, चार लोक स्वर्ग से ऊपर, वहां जब ब्रह्मा जी रात को सो जाते हैं तो प्रलय नहीं होती है, वो रहते हैं, और बीच वाले हैं इनकी प्रलय होती। इसको बोलते हैं नैमित्तिक प्रलय। वैसे 12वें स्कंद में चार प्रकार की प्रलय का वर्णन है, एक नित्य प्रलय जो रात को सो जाते हैं सभी, सब दुनिया भूल जाती है, परिवार भूल जाता है, धन भूल जाता है, पास में सोया हुआ बच्चा भूल जाता है, तो रोज का जो 7-8 घंटे सोते हैं ये तो नित्य प्रलय है। इसलिए हमारे पुराने आचार्य जो साधु संत है ना, रात को सोए को मुर्दे के समान समझते थे, इसलिए रात के सोने के कपड़े ही अलग होते हैं, वो कपड़े पहन के बाहर नहीं जाते हैं, उन कपड़ों को धो के सुखाना चाहिए, नहीं तो रात को पहनने के लिए रखना चाहिए, बाहर निकलने के लिए दूसरे कपड़े होते थे, क्योंकि अगर रात के पहने हुए कपड़े बाहर जाएंगे तो भूत लगेंगे, क्यों मुर्दे के कपड़े पहन के आए, और आजकल सारे मुर्दे घूम रहे हैं, आज कल जो ये जीन के पैंट निकले ये तो 15 दिन चलते हैं, रात को दिन को 24 घंटे चलते हैं। ये है साधु समाज में रात का पहनने का कपड़ा अलग होता था, शौच जाने का कपड़े अलग होते थे। पुराने जमाने में ये ड्रेसें तो अलग सब घरों में होती थी भाई, कहां बाहर जाने की ड्रेस ही अलग होती थी, शौच जाने की ड्रेस ही अलग होती थी। तो ये सिद्धांत है। तो एक कौन सी प्रलय हो गई, नित्य, दूसरी नैमित्तिक। नैमित्त का मतलब जब ब्रह्मा जी सोते हैं तब, तो ब्रह्मा जी का दिन और ब्रह्मा जी की रात। तो ब्रह्मा जी के एक दिन को एक कल्प कहते हैं, ब्रह्मा जी के एक दिन को एक कल्प कहते हैं। और ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मन्वंतर होते हैं, 14 मनुओं का शासन होता है, और एक मनु का शासन 71 चतुर्युगी तक चलता है। तो ऐसे 14 मनुओं का शासन होता है, तो बहुत बड़ा ब्रह्मा जी का दिन होता है। उतनी ही बड़ी ब्रह्मा जी की रात होती है, तब प्रलय होती है, उसको नैमित्तिक प्रलय कहते हैं। और एक होती है महाप्रलय, जब ब्रह्मा जी के 100 साल पूरे हो जाते हैं, तो फिर 14 भुवन ही पूरे जल निमग्न हो जाते हैं, महाप्रलय होती है। तब ऊपर के लोक भी समाप्त हो जाते हैं, और ब्रह्मा जी और उनके साथ ऊपर के लोगों वाले, ऊपर के लोग वैकुंठ चले जाएं तो उनके अपने जा सकते हैं, ऐसा सब कभी कभी होता है, लेकिन उसको महाप्रलय कहते हैं। और एक आत्यंतिक प्रलय जिसमें हम अपने जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त होकर भगवत धाम चले जाएं, उसको आत्यंतिक प्रलय कहते हैं। तो असल में हमारे को, हमारा लक्ष्य आत्यंतिक प्रलय, मतलब संसार के जन्म मृत्यु से मुक्त होना। और उसका सरल और उत्तम रास्ता है भगवान की कथा का श्रवण करना। जिसकी कथा समझ गए उसके अंदर मन लगेगा, तो अंत समय वहीं जाएंगे जिसका हमने सारे जीवन में श्रवण किया है। तो कथा श्रवण का मुख्य लक्ष्य ये है कि हमारे मन में भगवान की ये कथाएं, लीलाएं, नाम, गुण, रूप, लीला, चार चीजें रसिकों ने निर्धारित किया है। रूप, धाम, ललित, लीला और नाम, ये भगवत धाम जाने के 4 राजमार्ग हैं। रूप भगवान का, एक तो मंदिर में आएंगे तो दर्शन होगा, घर में छवि रखी होगी तो दर्शन होगा, अथवा ध्यान में भगवान को आप रोज देख देख के दिल में जमाएंगे तो होगा। धाम भगवान का धरती के ऊपर वृंदावन है, जब जाएंगे तब, द्वारका धाम है जाएंगे तब, जगन्नाथपुरी धाम है जाएंगे तक, चेतना महाप्रभु का नवदीप धाम में जाएंगे तब दर्शन होगा। ललित लीला भगवान की जैसे अभी कथा में आएंगे तो सुनने को मिलेगी। तो इन तीनों में तो थोड़ा सा प्रयास है, लेकिन चौथा है नाम, वो तो आप कहीं भी कभी भी कैसे भी ले सकते हैं। तो इसलिए गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में नाम प्रधान है, कुछ वैष्णव संप्रदायों में लीला प्रधान है, लेकिन गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में नाम प्रधान है। कलयुग पावन अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा नाम में है। जैसे ब्रज में भगवान ने अपनी कृपा ब्रज रज में रखी है, ऐसे महाप्रभु ने अपनी कृपा नाम में रखी, और महाप्रभु की पूजा भी नाम से होती। तो नाम जो है वो निरंतर लेने का अगर हमारा स्वभाव बन जाए तो निश्चित भगवत धाम जाना अनिवार्य है, जरूर आ जाएंगे। अंत समय हो सकता है कि हमारे को याद नहीं भी आए, लेकिन भगवान नहीं भूलेंगे। तो इसलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये तो नेम से पहले जपना शुरू करना चाहिए। क्योंकि हम कभी बच्चों से एक प्रश्न पूछते हैं कि आपको सप्ताह में कौन सा दिन सबसे अच्छा लगता है, तो आपका क्या विचार है, बच्चों का क्या उत्तर होगा? आतवार। क्यों? बोला छुट्टी होती है, कोई पूछने वाला नहीं, उठाने वाला नहीं, पढ़ाने वाला नहीं। इसका अर्थ ये है कि इस भौतिक जगत में हम सब कामचोर हैं, हम नहीं चाहते हैं कि कोई जवाबदारी उठाएं, ऐसे भगवान के नाम जपने में भी अगर जब हमारे को कष्ट आ जाएगा तो 24 घंटे जप लेंगे, काम हो जाएगा तो 24 दिन नहीं जपेंगे। इसलिए उसके लिए भी नेम रखा है कि नेम से, और नेम बांधा कौन से नेम पे है, अगर भोजन करते हो और सोते हो तो भगवान का नाम जपो, सोना छोड़ दो, खाना छोड़ दो तो भगवान का नाम छोड़ोगे तो चलेगा। प्रभुपाद की किसी ने कहा कि प्रभुपाद जी मैं बहुत सेवा में था, नाम नहीं जप पाया। प्रभुपाद ने कहा भोजन किया? बोला भोजन तो तीनों टाइम किया। बोला सोए थे? बोला सोया तो 6 घंटा। बोला सोना और खाना छोड़ दो तब नाम जपना छोड़ देना। तो ये तो दो काम तो छोड़ा नहीं, छूटेंगे नहीं। तो नाम निरंतर नेम से पहले जपना चाहिए, संख्या पूर्वक नाम गानन। ये सिद्ध भगवान के पार्षद वो जब धरती पे आए तब भी उन्होंने भी नाम गिन गिन के जपा, सिर्फ इसलिए, इसलिए मूर्ख जिनको नहीं जपना है ना वो कहते हैं भगवान से कौन सा हिसाब किताब करना है, बस जो आए जपो, कोई क्या गिनती करने की जरूरत है। तो हम उसको कहते हैं तुम्हारे को कोई पैसा वापस देके जाता उधारता, गिनते हो कि नहीं गिनते हो? बोले नोट तो अच्छी तरह से 10 बार गिनते हैं। क्यों गिनते हो भाई, रख दो ना, तुम्हारा इतबार नहीं है, विश्वास नहीं है क्या किसी के ऊपर? जब दुकानदारी करते हैं तो एक एक रुपया गिन के लेते हैं, और भगवान का नाम है उसके गिनने की जरूरत नहीं है। तो ये बेईमानी, ये तो ईमानदारी नहीं है तब ऐसे हो रहा है ना। तो नाम मुख्य रूप से महाप्रभु की कृपा नाम में, और महाप्रभु कली पावन अवतार है। जैसे गत वर्ष के अक्टूबर नवंबर का नोट 1000 का घर में पड़ा होगा तो चलेगा नहीं, वो तो कागज के टुकड़े के बराबर हो गया। एक साल है तो हमारे आंखों के सामने हुआ, रात को तो 1 लाख रुपए का मालिक था और दूसरे दिन तो 1 लाख किसी काम का नहीं था। हाँ, उसके उसके तो चने भी नहीं मिलेंगे। हाँ, तो 1 पैसे के बराबर नहीं हुआ। इसका मतलब एक तो ये कागज के नोट किसी काम के नहीं है। जिसके घर में चांदी सोना था वो तो आज भी उतना ही उतनी कीमत है, लेकिन ये पेपर तो रात रात में पानी फिर गया इसके ऊपर। ऐसे युगों का भी, जैसे द्वापर युग का नेम था वो अपना चला गया, अब ये कलयुग को युग की करंसी चेतना महाप्रभु ने हरे कृष्ण महामंत्र चलाई, और ये महामंत्र और किसी युग में आता ही नहीं है, तब दूसरे मंत्र होते हैं। ये मंत्र तो गोलोकेरा प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, ये तो गोलोक में हरे कृष्ण मंत्र राधार तंत्र, ये तो गोपियां और राधा रानी प्रेम से गाती हैं जिससे भगवान श्री कृष्ण को वश में करती है। तो ये मंत्र तो राधा भाव में जब चैतन्य महाप्रभु आता है तभी धरती के ऊपर आता है, नहीं तो ये मंत्र सामान्य रूप से अन्य युगों में कृष्णाय वासुदेवाय हरि हे परमात्मने नमः ये मंत्र होते हैं, नमो नमो नारायण ये होते हैं, नमो भगवते वासुदेवाय है, लेकिन ये मंत्र महामंत्र तो महाप्रभु ही केवल लाते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं तुमने भगवान से वचन किया था हरे कृष्ण मंत्र महाप्रभु लाए, आप इसको मांग ले, ले लो, इसको मांग के ले लो। तो हम कितने भाग्यशाली हैं कि अभी 521 साल हुए महाप्रभु को इस धरती के ऊपर, यहीं इसी वृंदावन धाम में पैदल चल के गंगा जी के तट से, प्रयागराज से गंगा के किनारे किनारे चल के, और यहाँ सोरो तीर्थ है, सोरो से होते हुए और वृंदावन में आए। वो तो यहाँ कोई लंबा समय नहीं हुआ, 500 साल के मुगलों के समय को सबको याद है, अकबर का तो इतिहास लिखा हुआ है। तो हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमारा इस महाप्रभु के युग में, ये युग 10,000 साल तक चलेगा स्वर्ण युग, इसमें जन्म हुआ है, तो हमको तो इसका पूरा लाभ होना लेना चाहिए, और यही करंसी चलेगी, और कोई करंसी चलेगी नहीं। हाँ, बहुत से पूजा हो रही है, बहुत से मंदिर हैं, लेकिन भक्ति नहीं दिखेगी आपको कहां, भक्ति नहीं दिखेगी कहीं। कल हमने कहा था कथा में, जो आए थे उन्होंने सुना होगा कि भक्ति ने भागवत के महात्म में नारद को कहा था कि ये भारतवर्ष के लोग मेरा अनुशीलन नहीं करेंगे तो मैं गमिष्यामि, मैं चली जाऊंगी समुद्र पार। और भक्ति प्रभुपाद जी के हृदय में बैठकर वृंदावन से चली गई, और वापस आई तो प्रभुपाद जी के माध्यम से, कृष्ण भावनामृत संघ के माध्यम से आई। ये सत्य है। और ये बहुत अच्छे अनुभवी महात्मा प्रभुपाद जी के 100 साल में आए थे जो, तो उन्होंने ये अनुभव बताया भागवत के इस श्लोक के आधार के ऊपर कि असल में भक्ति इस महात्मा के हृदय में बैठकर कहा था चली ही गई, और जब इन्होंने इसका प्रकाश किया है तब ये भक्ति अब पूरे विश्व में, जैसे नारद जी ने वचन किया था जन जन तक और कण कण तक, कान कान तक और एक एक व्यक्ति तक भक्ति पहुंचेगी। और ये महाप्रभु का भी जो भविष्यवाणी है कि हरे कृष्ण मंत्र गांव गांव में गाया जाएगा, तो ये तो श्रील प्रभुपाद के द्वारा ही हुआ है, और किसी ने इससे पहले ऐसे किया नहीं। हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण पूरी दुनिया में प्रभुपाद से पहले ऐसे हुआ नहीं है। तो इसका मतलब भक्ति अब पूजा है, बहुत जगहों पे मंदिर मिलेंगे, पूजा मिलेगी, लेकिन भक्ति, और वो भक्ति जिसके जिसके साथ संपूर्ण ज्ञान और वैराग्य है। ज्ञान का यहां अर्थ है भगवान को जानना, कृष्ण के तत्व को जानना, उसके रूप गुण लीला को जानना। और वैराग्य का अर्थ है संसार के 4 पाप कर्मों का परित्याग करना, और पाप कर्म कलयुग के कारण जो है इनसे परित्याग करना। अब देखेंगे तो ये 4 नियमों के पालन करने वाले बहुत कम लोग मिलेंगे, साधु संतों में भी कम मिलेंगे। आप अच्छी तरह से देखेंगे तो ये त्याग करने वाले साधु समाज में भी बहुत कम मिलेंगे, नहीं तो छोटा मोटा नशा तो सब जगह चल ही रहा है साधु समाज में, और नहीं तो ये तो चल ही रहा है। तो इसलिए शुद्धता जो भक्ति की है, ये श्रील प्रभुपाद के माध्यम से विश्व भर में प्रचारित हुई है। तो बात यहां कर रहे थे शब्द की, श्रुत्वा सुधामनो, अपने धाम में बैठे हुए सत्यलोक में बैठे हुए अज ब्रह्मा जी ने, और एक शब्द है अंत्य, अंत्य का मतलब ब्रह्मा जी के लोक के निकट के लोकों में यह सब ध्वनि हो रही थी। अंत्य मतलब पड़ोसी, मैंने जैसे रोज यहां कीर्तन हो तो पड़ोस में वालों को घर में बैठे हुए सुनाई दे, तो यहां ब्रह्मा जी से एक शिक्षा लेनी चाहिए। जब अच्छा अद्भुत मंगलकारी भगवान की महिमा का गुणगान सुनने को मिले नजदीक से, तो लिखा है आगतो अचराद, तत्काल आए, देर नहीं की, एकदम चिराद, चिरकाल मतलब ज्यादा, अचराद मतलब तत्काल आ गए, आगता मना आए, वो भागते हुए वहां उत्सव को देखने के लिए आए। इसका मतलब जहां यहां मंगल आरती हो रही है, कीर्तन हो रहा है, तो पड़ेसों को भागते हुए यहां आना चाहिए। ब्रह्मा जी तो ये कह रहे कि तत्काल आना चाहिए उनको यहां, क्योंकि ब्रह्मा जी तो हमारा पिता है सबका, भाई उत्पत्ति करने वाला ब्रह्मा है, ये सृष्टि तो ब्रह्मा जी ने बनाई, तो बाप के शिक्षा बाप की लेनी है, तो मंगल ध्वनि जब भी कहीं सुनाई दे तो भागते हुए वहां आना चाहिए। इतना अद्भुत भाग्य से हो रहा है उत्सव, तो जाना चाहिए। तो ब्रह्मा जी वहां आए, क्या देखा, दृष्ट्वा देखा। अब क्या देखा होगा, ब्रह्मा जी हंस के ऊपर चढ़ाए, ब्रह्मा किसके ऊपर चढ़ते हैं, उनका सवारी क्या है ब्रह्मा जी का, हंस, स्वान के ऊपर आते हैं हंस के ऊपर, हंस नीर खीर को अलग करने वाला होता है, और ब्रह्मा जी वेद गर्भ है, इनके हृदय में भगवान ने वेद दिए हैं। असल में क्या है कि भगवान श्री कृष्ण को ये लीला से पहले, मुख्य लीलाएं भगवान की जो बाल लीलाओं में है वो है माखन चोरी की लीला। तो भगवान ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम, ब्रज में तो बड़ा प्रसिद्ध है भगवान, नवनीत मतलब मक्खन का चोर। भगवान ने कहा ये सब मुझे चोर कहते हैं, ब्रह्मा जी तो वेद पढ़ा हुआ है, हंस के ऊपर चढ़ता है, अगर मैं उसको चोरी करने के अंदर प्रेरित कर दूं तो कम से कम फिर मुझे कोई चोर तो अकेला नहीं कहेगा, कहेगा ब्रह्मा भी चोरी किया है ना,
तो ये लीला जो है वो ब्रह्मा को चोर बनाने की है। अब ब्रह्मा करेगा बछड़े चुराएगा ग्वाल वाल चुराएगा, भगवान कहते मैं तो मक्खन चुराया, ये तो गाय के बछड़े और आदमी बच्चे ही चुरा के ले गया, तो इतना वेद पढ़ने वाला चोर हो सकता है, तो मैंने चोरी की तो क्या हो गया। तो ये ब्रह्मा को चोर बनाने की बड़ी अद्भुत लीला है भगवान की। इस लीला से ब्रह्मा प्रेरित होके चोरी करेगा। इतना बड़ा वेदज्ञ हंस के ऊपर आया जो सच और झूठ को जानने वाला है, उसने क्या दृष्टवा क्या देखा। जब ब्रह्मा जी आए थे ना उस वक्त, अब क्या है ब्रह्मा जी वहां से आए तो इसमें समय कितना लगा, बच्चे बाहर आ गए और सबने का भूख लगी है कृष्ण, तो भगवान ने कहा चलो जमुना जी की पुलीन में चलते हैं। वो रेत ऐसी है जमुना जी की, बहुत मुलायम रेत है, उसके ऊपर बैठ गए और बैठ गए। सबने अपने अपने टिफिन खोले और जैसे टिफिन खोले तो हरेक खोल के कहता देखो मेरी मैया ने कैसे बनाया है, भगवान आप ले लो। तो बीच में मधुमंगल बोलता है क्यों भाई पहले ब्राह्मण को देना चाहिए, आप लोग अब ऐसे क्या करते हो आहिर हो। तो बीच में खाले चखले बुलाए बहुत अच्छा रसगुल्ला मेरी माँ ने बनाया कन्हैया खाओ, तो अब जूठा अपना दे रहा है। अरे छाछ देखो कैसी मेरी मारी है, रबड़ी देखो मेरी कैसी है। ब्रह्मा जी कहता है यज्ञ में तो इतनी पवित्रता से ब्राह्मण स्वाहा करते हैं, भगवान तो आते नहीं है लेने, और यहाँ ये जूठन बूठन खा रहे हैं। और फिर भगवान के हाथ में और उल्टे हाथ में दही भात है और उंगलियों के बीच में आचार है, नींबू का आचार है, आम का आचार है, गाजर का आचार है, अब बर्तन भी नहीं है। ब्रह्मा जी बोले इसकी सब पूजा करते हैं हम, रोज इसके मंत्र गाते हैं, ओ ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, इसका गुणगान करते। अब ब्रह्मा जी का माथा घूमा दृष्टवा, ये आगे ये आएगा। अभी यहां जो है इस श्लोक में दृष्टवा मही महिमा, मही का मतलब महिमा, अस्य इस भगवान की, जिसके शरीर में अघासुर की आत्मा प्रवेश किया उस भगवान की महिमा को जगाम, सब गा रहे थे ये सुना, विस्मयम बहुत बड़े विस्मय में पड़ गए। विस्मय में पड़ने का मतलब क्या क्या हुआ ऐसा। वैसे कहते हैं उस वक्त यमराज ने जब देखा कि अघासुर को भगवान ने मुक्ति दे दी तो यमराज मूर्छित हो गया अपने विमान में, पर इतना पापी आज तक कोई तरा नहीं है और ये हमारे देखते देखते तर गया। और ब्रह्मा जी जो सबका विधाता है, सबका विधाता किसको कहते हैं, जिसने सबका क्या होने वाला है सब लिखा है, सब जानता है, विधि है इसका नाम है विधि, मन जो जो जिसके जीवन में होना है उसको लिखने वाला है, वो कहता है अघासुर का उद्धार हो गया। तो विस्मय में पड़ गए का मतलब है ये बात उसके समझ में आई नहीं कि ऐसे कभी हुआ नहीं है इतिहास में, ये कैसे हो गया। तो पहले अद्भुत है फिर विस्मय है, शुरू शुरू श्लोक होता है अद्भुत से और समाप्ति होती है विस्मय में, तद अद्भुत क्या शब्द अद्भुत है ना, तद अद्भुत और विस्मय, आगे अद्भुत पीछे विस्मय, अब दोनों में अंतर क्या। देखो सामान्य अंग्रेजी में दोनों का अर्थ एक ही होगा, देख लेना, अद्भुत वंडरफुल और विस्मय एस्टोनिश्ड, पहले आश्चर्य लगा और फिर विस्मय में पड़ गए। विस्मय का अर्थ क्या होगा, आश्चर्यचकित हो गए, विस्मय जगाम विस्मयम, जगाम विस्मयम ईशस्य, ईश दृष्ट्वा मही ईशस्य, ईशस्य कृष्णस्य महिमा को दिखा तो बहुत बड़े विस्मय में हो गए। ऐसे सकते के आलम में ऐसे भी हो सकता है क्या, इतने बड़े पापी का उद्धार हो गया।
तो ब्रह्मा जी के मन में और अधिक लीला देखने का भाव उठा, और विश्व में डालने वाली कैसी लीलाएं होगी। वैसे भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज में और बाद में द्वारका लीला में 8 बड़े महान देवताओं को विमोहित किया है, तो आगे वाले लीला का नाम ही है ब्रह्मा विमोहन लीला। शंकर जी को विमोहित किया है द्वारका लीला में, जब भगवान बाणासुर सहस्र बाहु बाणासुर से युद्ध करते हैं, तब ब्रह्मा जी विस्मय में हो गए, और तब शंकर जी विस्मय में हो गए, और इंद्र गोवर्धन लीला में हो गए। तो ऐसे 8 देवताओं को आगे पीछे देखेंगे तो भगवान ने भ्रमित कर गया, विस्मय में डाला है भगवान की लीलाओं के अंतर्गत। जो महान सब देवता हैं वो भगवान की लीलाओं को देखते देखते आनंदित तो हुए, लेकिन विस्मय में पड़ गए और विमोहित भी हो गए, विशेष मोहित हो गए, माया से नहीं भगवान की लीला से। तो अब इस श्लोक का अर्थ पढ़ते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब भगवान ब्रह्मा ने, देखो यहां भगवान ब्रह्मा लिखा है क्योंकि अंग्रेजी में लिखा होगा लॉर्ड ब्रह्मा, तो लॉर्ड को भगवान बना दिया, तो फिर लॉर्ड माउंटबेटन को लिखेंगे लॉर्ड भगवान माउंटबेटन क्या? हाँ, ये अंग्रेज के जितने यहां रहे वो सब लॉर्ड हुए, लॉर्ड मेकाले लॉर्ड माउंट, तो क्या इनका भगवान लिखेंगे क्या? ये अंग्रेज के शब्द ने सबको गली गली में भगवान बना दिया। लेकिन एक सिद्धांत आज समझ लीजिए, हमारे प्रचलित भाषा में गुरुदेव भगवान कहते हैं, ब्रह्मा जी को भगवान कहते हैं, शंकर भगवान कहते हैं, ये ठीक है, कभी सुखदेव भगवान कहते हैं। लेकिन भगवत गीता में जब भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं तब क्या बोला जाता है? श्री भगवान वाच, उनके आगे श्री लगेगा। ये जितने गुरुदेव भगवान, शंकर भगवान, ब्रह्मा भगवान, इनके आगे श्री नहीं लगेगा। श्री युक्त भगवान मतलब लक्ष्मी के साथ नारायण, स सीता के साथ राम और राधा के साथ कृष्ण, तो श्री का मतलब है सीता। तो इनमें से किसी के साथ न गुरु के साथ श्री लगेगा, न ब्रह्मा के साथ श्री लगेगा, न शंकर के साथ श्री लगेगा। तो ये भगवान कहने के बाद भी, जैसे परमात्मा कहे है ना, ईश्वर कहे भगवान, किसी आदमी को ईश्वर कहे तो भगवान के लिए परमेश्वर शब्द है, अगर किसी को ब्रह्म कहे तो भगवान के लिए पर ब्रह्म शब्द है। तो ऐसे यहां किसी को भगवान कहे तो भगवान के लिए श्री भगवान शब्द है। तो ये अंतर है। तो भगवान ब्रह्मा, भगवान का यहां अर्थ है जिसने भगवान, असल में भगवान उसको कहते हैं जो भगवान की सेवा में तलीन है। गुरुदेव को भगवान क्यों कहते हैं? कृष्ण प्रियष्टा, भगवान श्री कृष्ण को प्रिय है, इसलिए कहीं कहीं आता है कि जो भगवान को बहुत प्रिय होते हैं उनमें भगवान के गुण आ जाते हैं, इसलिए उसको भी भगवान कहते हैं। जिनको हम भगवान कहते हैं आप अगर सोचेंगे तो उनको भगवान कहते हैं जो भगवान का निरंतर ध्यान करते। शंकर जी को भगवान कहते हैं, वो समाधि में रोज निरंतर भगवान संकर्षण उनका आराध्य है। 5वें स्कंद भागवत में आता है, इलावर्त वर्ष में भगवान शंकर और पार्वती संकर्षण का, उनका आराध्य देव संकर्षण है, तो संकर्षण का निरंतर चिंतन करते हैं। हाथ में माला है शंकर जी, कभी देखें माला है तो जप रहे हैं ना माला कोई। ऐसे ब्रह्मा जी तो ब्रह्म संहिता में कृष्ण महिमा गाया है, तो गुरु जी होता है वो भी भगवान की महिमा गाता है, तो उन्हीं को भगवान कहते हैं जो भगवान के बहुत निकट है। जैसे प्रभुपाद शब्द है, वैसे प्रभुपाद, प्रभु तो स्वामी को कहते हैं, उसके पद को कोई प्राप्त करे, जो भगवान के चरणों का निरंतर सेवक है वो प्रभुपाद हो जाता है, वो प्रभुपाद की उपाधि का अधिकारी होता है। तो भगवान भी उनके लिए लगता है जो भगवान के बहुत प्रिय हैं।
जिन्होंने भगवान के गुणों को भगवान की कृपा से अर्जित किया है और जो भगवान की महिमा गुण लीला गा गा के दूसरों को भगवान के निकट ले जा रहे हैं। तो भगवान ब्रह्मा ने अपने लोक के निकट ही ऐसा अद्भुत उत्सव होते सुना जिसके साथ साथ संगीत गीत तथा जय जयकार हो रहा था, तो वे तुरंत उस उत्सव को देखने चले आए। कृष्ण का ऐसा गुणगान देखकर वे अत्यंत विस्मित थे। तात्पर्य में सिर्फ दो लाइनें हैं। अंति का अर्थ है निकट, जिससे सूचित होता है कि उच्च लोकों में भी ब्रह्म लोक के निकट, उच्च लोकों में भी मतलब स्वर्ग आदि से ऊपर, क्योंकि अभी तक जो बात हुई है वो हुई है स्वर्ग तक के लोगों की, कि नंदन कानन से देवताओं ने पुष्प वृष्टि की, लेकिन यहां प्रभुपाद जी ब्रह्मा जी के निकट के लोगों का शब्द आया है। तो श्री प्रभुपाद जी कहते हैं ब्रह्मा जी के निकट के लोगों में भी, इसका मतलब जब देवताओं ने ऐसे किया तो उसके ऊपर का वाले लोक जो है कौन से हैं, महर लोक, जन लोक, तप लोक आदि में भी कृष्ण के गुणगान का उत्सव चल रहा था। इसका मतलब देवताओं को जब कैसे करते हो तो इन तीनों लोकों में ऊपर कौन रहते हैं, जो भी सप्तऋषि, हर मन्वंतर में सप्तऋषि होते हैं और वो बदलते रहते हैं, जो बदल जाते हैं ना वो जाके सत्यलोक में और तपलोक में महर लोक में रहते हैं, फिर जब दोबारा आता है तो उनको वहां से बुलाते हैं। तो ऊपर के लोकों में, ये तीन लोकों में सारे ही तपस्वी रहते हैं, इसलिए तपलोक कहते हैं। महर लोक, जन लोक, सब ऊर्ध रहता ऋषि रहते हैं ऊपर, सब वो महात्मा वो रहते हैं जो तपस्वी हैं, और वो प्रलय भी नहीं होती है, जब ब्रह्मा सोते हैं तब प्रलय भी नहीं होती है उन लोकों में, ये लोग ऊपर चले गए सत्य लोक में जाके रह जाते हैं, केवल स्वर्ग लोक तक ही प्रलय होती है, स्वर्ग लोक से ऊपर प्रलय नहीं होती है। और इन लोगों को जन्म मृत्यु का भी डर नहीं है, इन लोगों को बीमारी भी नहीं होती है, बुढ़ापा भी नहीं होता है, इन लोगों को एक ही चिंता होती है। ऊपर से जब धरती के लोगों को मानव जन्म लेने के बाद भी भगवत भक्तिहीन देखते हैं तो उनका हृदय द्रवित होता है और धरती के ऊपर प्रचार करने के लिए आने की इच्छा होती है। एक ही लिखा है कि इन लोगों के निवासियों को धरती के ऊपर रहने वाले मानव की दुर्लभ जन्म के सदुपयोग न करते हुए देख के बड़ी चिंता होती है, नहीं तो इनको और कोई कष्ट नहीं है। इसका मतलब ये सुहृद है, इनके हृदय में दया भरी हुई है, उन्होंने जब स्वर्ग लोक में उत्सव देखा तो उन्होंने भी उत्सव किया, इसका मतलब वहां भी गान होने लगा, नहीं तो स्वर्ग लोक से ऊपर तीन लोक तो ऊपर और हो गए ना, जन लोक, महर लोक और तप लोक, और फिर आएगा सत्य लोक। तो ब्रह्मा जी ने निकट से सुना तो प्रभुपाद जी के तीन शब्दों में ऐसे इसका अर्थ ये है कि सत्य लोक, जन लोक, तप लोक और महर लोक में भी उत्सव हो रहा था। तो इसका मतलब भगवान का उत्सव तीनों लोकों में गाया जाता है, तो भगवान सर्वत्र भगवान की महिमा गाई जाती है। यदि भगवान की कथा युधिष्ठिर महाराज के यहां भगवान की कथा होती थी, रामचंद्र जब राज तिलक हुआ तो सारे ऋषि अगस्त ऋषि के साथ आए और बहुत बड़ी कथा होने लगी, ये उत्तर रामायण में, उत्तर कांड में आता है। तो जब युधिष्ठिर महाराज के यहां नारद ऋषि आए तो मां पूरा सातवां स्कंद, पूरा सातवां स्कंद भागवत का नारद और युधिष्ठिर महाराज का संवाद है। जब इतने बड़े राजा महाराजा कथा का टाइम निकाल सकते थे, साक्षात भगवान अवतार लेकर आए रामचंद्र, तो अगस्त के साथ
हनुमान की महिमा सुनने के लिए राक्षसों के वंशावली सुन रहे, और ये हम दुकान मकान छोटा चलाने वालों को टाइम नहीं है कथा का, ये हमारी मूर्खता है कि नहीं? जब इन बड़े लोगों में जिनको कोई तकलीफ नहीं, संकट नहीं, कष्ट नहीं, वो भी भगवान का गुणगान करते हैं, कीर्तन करते हैं, स्तोत्र गाते हैं, नृत्य करते हैं, वाद्य बजाते हैं, तो हम मानव लोक में बैठ के अगर ये कार्य नहीं करें तो निंदनीय कार्य है, हमको करना चाहिए। जब इतने ऊपर के लोगों के जिनका काम भी बड़ा है वो भी करते हैं, राजा महाराजाओं के पास सत्संग होता है, तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ सत्संग होना चाहिए। तो यहाँ ये श्लोक पूर्णता के ऊपर पहुंचता है। अब ब्रह्मा जी आए हैं तो परीक्षित महाराज कुछ पूछेंगे आगे। तो फिर दूसरी लीला शुरू होगी, ब्रह्मा तीसरे 13वें अध्याय में ब्रह्मा विमोहन लीला होगी, और 14वें अध्याय में ब्रह्मा जी की स्तुति है, वो बड़ी अद्भुत ब्रह्मा जी की स्तुति है भगवान श्री कृष्ण की। ये अघासुर लीला हुई कहाँ थी? ब्रजभूमि, ब्रज में, वत्सवन, चौमुहा से अंदर,
चौमुहा में ब्रह्मा जी ने स्तुति की थी। ये चार मुंह वाला था ये चौमुहा, और भोजन कर रहे थे वो जो जहाँ बछड़े चुराए थे वो सही गांव, जो सही है गलत ऐसा ब्रजवासी बोलते हैं, सही है कि वो सही है, जो हमने चुराए हैं वो सही है, हाँ जैसे दोबारा बन गए वो सही,
वो सही जो रास्ते में आता है जाते हुए सही गाँव से।
वहाँ तीन गाँव था, एक है सही, एक है मई, और एक है वसई,
सही मई वसई,
वसई
हाँ,
और चौमा। तो चौमा की जो प्रभु जी बताए
वो जब आया सबने कहा ये चार मुंह वाला क्या ऐसे कर रहा है सर? हाँ, हाँ। क्या क्या वो प्रणाम कर रहा था ना, अब ब्रह्मा जी प्रणाम करे चार मुंह कैसे करे, तो रोलर नहीं घूमता है जैसे रोड के ऊपर ऐसे घूम रहे थे, तो सब आश्चर्य हुआ कि ये रोड बनाने वाला कहां से आया नया। और भगवान ने देखा नहीं ब्रह्मा को, ब्रह्मा की ओर वो आंख उठा के देखा तक नहीं, आश्चर्य हुआ ही।
और मई गांव जो है,
हाँ,
वो मई गांव है कि वहां से ब्रह्मा जी अवलोकन किए तो दिखाई दिया कि ये बछड़ा बछड़ा तो है नहीं, ये कृष्णमय है, सब चतुर्भुज मय, तो मय 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 हो गया।
ओ मई गांव,
मई गांव है,
मई गांव में ब्रह्मा जी ने चार हाथ वाले बछड़े भी देखे और ग्वाल बाल भी देखे, तो ये मई कृष्णमयी गांव हो गया। और सही में, और ये मेरे पास जो छुपा के रखे हैं ये बछड़े सही है, ग्वाल बाल के जो वो घूम रहे हैं वो सही है, तो सही हुआ मई हुआ और भगवान वहाँ बैठे थे जहाँ बैठ के खा रहे थे, ये सब सब किनारे किनारे के तीनों गांव। तो अघासुर का जो कल आएगा, कल का श्लोक में आएगा अघासुर का, एक साल के बाद जो सूख गया शरीर वो सबके लिए खेलने का, बच्चे खेलने जाते थे उसके अंदर, गुफा जैसी बन गई। तो ये अघासुर कहाँ मरा था?
वो भी एक गांव का नाम है, जिससे अघासुर से संबंधित वो गांव का नाम याद नहीं है, अघासुर मरा था वो ब्रजवासी बताते
तो वो मैंने अघासुर के वध की लीला भगवान के बछड़ा चराते हुए हुई, तो उसी के ये तीनों गांव चार जगह इसी के पास में कहीं होगा अघासुर गांव, उसको भी ढूंढ। हाँ सपोली, सपोली गांव। और जब भगवान की लीला श्री कृष्ण की किसी सांप के साथ होती है उस दिन बलराम चोटी करते, उस दिन बलराम जी की जन्म तिथि आ जाती है, क्योंकि बलराम जी होंगे तो सांप आएंगे नहीं, वो तो आदि संकर्षण है, वो तो शेष है आदि, तो इससे इसे अघासुर लीला में बलराम नहीं आए, कालिया वाली लीला में भी बलराम नहीं आएंगे, बलराम जी उस दिन छुट्टी करते हैं तब ये लीला हो पाती है। तो सपोली गांव में अघासुर का भगवान ने उद्धार किया। हरे कृष्ण, धन्यवाद।